कैंटो 18 चैप्टर 4
नवम अध्याय अध्याय 18 श्लोक 40 संख्या 40 अनुवाद संस्कृत से इंग्लिश श्री श्रीमद् एसी डॉक्टर वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा
Thank you.
Joe, Yayati K, Jisht Putrate, Utardi. Utardi. Jawabdi. Na utsahe, jarasa,
jarasa,
ake burapese,
ake burapese,
statum,
statum,
rahe anekele, antara,
antara,
javanime,
javanime,
praktaya,
praktaya,
svikakya hua,
svikakya hua,
tava,
tava,
anuvade apka, like actually tumka. It should be that. Tava means bhavan, bhavata. Anyway, anuvade apka. Avidiva,
avidiva,
vina anubhav kie,
vina anubhav kie,
sukham,
sukham,
suk,
suk,
ramyam,
ramyam,
bhutik ya sharir,
bhutik ya sharir,
vaitrishnyam,
vaitrishnyam,
bhutik suk se virakti,
bhutik suk se virakti,
na,
na,
nahi,
nahi,
iti,
iti,
prat karta hum,
prat karta hum,
purushaha,
purushaha,
vyakti. Anuvad. Yadunai uttar diya. He pitaji, yadyapi api tarun purush te. Kintu apne vridha vasta prat kar li hai. Kintu mujhe aapka purapa tata jar jarata tanik bhi manya nahi hai kyunki bhautik sukh ka bhog kiye bina koi virakti prapt nahi kar sakta. So I ask him, if you want to read, hear Bhavan. Bhotik bhog se virakti hi manav jivan ka charam lakshya hai. Isliye varnashram vyavastha atyanta vaigyanik hai.
भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है. इसीलिए वर्णाश्रम
सब अपना मोबाइल जाना सदम किसी आज का विषय है भौतिक भोग से विरक्त हो. मोबाइल का प्रेम से विरक्त होना चाहिए. आधा घंटा मोबाइल के बिना बात न करे महातपस्या जरा सा बंद कीजिए. मैं लंदन से आया हूँ आपको यही आदेश देने के लिए आपका मोबाइल बंद करो.
भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है. इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है. इसका लक्ष्य मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग किए बिना प्राप्त कर सकना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्य मुखस्य। जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है उसे निष्किंचन होना चाहिए, अर्थात भौतिक भोग के सारे आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। ब्रह्मण्यु पशम आश्रयम, पूर्ण विरक्त हुए बिना ब्रह्म में या भक्ति में स्थिर नहीं हुआ जा सकता। ब्रह्म पद पर ही भक्ति की जा सकती है। अतएव जब तक मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भक्ति में नहीं लग सकता। अथवा दूसरे शब्दों में, भक्ति में संलग्न व्यक्ति पहले से ब्रह्म पद पर रहता है। माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान गुणान समीप्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवत गीता 14:26। अतः जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। सामान्यतया जब तक भौतिक सुख का भोग ना कर ले, तब तक कोई वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वर्णाश्रम क्रमशः उत्थान के लिए अवसर प्रदान करता है। महाराज ययाति के पुत्र यदु ने बतलाया कि वह अपनी जवानी त्याग पाने में असमर्थ है, क्योंकि वह इसका उपयोग भविष्य में संन्यास आश्रम प्राप्त करने के लिए करना चाहता है। महाराज यदु अपने भाइयों से भिन्न थे, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है, तुर्व सुशोचोदितः पित्रा द्रुवयुक्चानुश्चः भारत प्रत्याचक्षुर धर्मज्ञः। महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के प्रस्ताव को मानने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे धर्म से भली भांति अवगत न थे। उन आदेशों को स्वीकार करना जो धर्म का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से पिता के आदेशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः जब महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना तो यह सचमुच धर्म विरुद्ध था, किंतु महाराज यदु द्वारा निषेध धर्म सम्मत था। जैसा कि दशम स्कंध में कहा गया है, यदोश्च धर्मशीलस्य। महाराज यदु धर्म के सिद्धांतों से पूरी तरह अवगत थे। धर्म का चरम सिद्धांत भगवान की भक्ति में अपने को लगाना है। महाराज यदु स्वयं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, किंतु एक बाधा थी। जवानी में भौतिक इंद्रियों के भोगने की इच्छा होती है, और जब तक जवानी में इन इच्छाओं को पूरी तरह तुष्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक भगवान की सेवा करने में विघ्न उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। हमने सचमुच देखा है कि ऐसे अनेक सन्यासी जो अपरिपक्वावस्था में संन्यास ग्रहण करते हैं, अपनी इच्छाओं को तुष्ट न किए रहने के कारण विचलित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सामान्य नियम यह है कि संन्यास के पूर्व गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ जीवन बिताया जाए और अंत में संन्यास ग्रहण करके भगवान की सेवा में संलग्न हुआ जाए। महाराज यदु अपने पिता के आदेश को मानने और वृद्धावस्था के बदले जवानी देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह जवानी उनके पिता लौटा देंगे। लेकिन इस आदान प्रदान से उनकी भक्ति में विलंब होता, अतः वे अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वे निर्विघ्न स्वतंत्रता चाहते थे। साथ ही यदुवंशियों में ही भगवान कृष्ण को जन्म लेना था, और महाराज यदु उत्सुक थे कि भगवान का प्राकट्य यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र हो, इसलिए उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर भी यह धर्म के विरुद्ध न था, क्योंकि यदु का उद्देश्य भगवान की सेवा करना था। क्योंकि यदु भगवान के आज्ञाकारी दास थे, इसलिए कृष्ण ने उनके वंश में जन्म लिया, जैसा कि कुंती की प्रार्थना से पुष्टि होती है, यदो प्रियस्यान भावे प्रियान भावे। कृष्ण को यदु अत्यंत प्रिय थे, अतएव वे यदु वंश में अवतार लेने के लिए उत्सुक थे। निष्कर्षतः महाराज यदु को अधर्म अधर्मज्ञ नहीं मानना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में उनके भाइयों के लिए कहा गया है, वे यदु चार कुमारों चतुसन की भांति थे, जिन्होंने उत्तम कार्य के लिए अपने पिता ब्रह्मा के आदेशों को नहीं माना। क्योंकि चारों कुमार ब्रह्मचारी के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते थे, अतएव उनके द्वारा पिता की आज्ञा को न मानना अधर्म नहीं था।
लोगों का रिंगटोन से हम समझ सकते हैं उनकी रुचि किसमें है। अगर श्रील प्रभुपाद का कीर्तन है हम समझ सकते हैं भक्त, और यदि फिल्मी गान है हम समझ सकते हैं कि शायद भक्त है, लेकिन इतनी सी रुचि नहीं है। जो भी रिंग टोन है आपका फोन का, जरा सा उसको बंद करो। तो ये विषय से हम बहुत उपदेश मिल सकते हैं। ये विचित्र है कैसे है? यदु इनके पिताजी का आदेश पालन नहीं किया, स्वीकार किया, और उनके अन्य भाइयों ने अस्वीकार, अन्य भाइयों की पालन नहीं करना अधर्म था, और यदु राजा का पालन करना परम धर्म, दोनों अस्वीकार। तो अंतर क्या था जिससे अन्य भाइयों का अस्वीकार करना अधर्म था और यादव का अस्वीकार करना धर्म? तो अन्य भाइयों अस्वीकार किया क्योंकि उन्होंने सोचे कि हमें भौतिक भोग विलास करना है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और यादव भी ऐसा विचार के कि मुझे भौतिक सुख अनुभव करना है, तो दोनों का विचार एक ही था या दोनों का प्रस्ताव है। परंतु यादव भौतिक सुख अनुभव करना चाहते थे क्योंकि उनका चरम लक्ष्य था कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, और उन्होंने विचार किया कि यदि मैं भौतिक सुख का अनुभव नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति में इंद्रियों का वेग से मेरी भक्ति तो पूरी नहीं हो सकती, और इसलिए भौतिक सुख का अनुभव करना चाहिए। याद हो तो वो एक उपदेश कि धर्म का विचार बहुत सूक्ष्म हो सकता है। महाभारत में ही ऐसे बहुत घटना थी जिसमें धर्म पालन करने से अधर्म होगा और अधर्म पालन करने से धर्म होगा। एक कहानी है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया, शायद आप सब अवगत हैं, कि एक ब्राह्मण एक संकल्प किया कि मेरे पूरे जीवन में मैं नित्य कभी भी नहीं कहूंगा, तो वो ब्राह्मण तो जंगल के पास रहते थे, घर तो जंगल के पास. तो एक बार एक आदमी आया था, वो बहुत भाई भी, बोले कि मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास बहुत सोना है और मेरे पीछे कुछ डाकात है, तो मेरे से वो सोना का चोरी करना चाहते, मैं कहाँ जाऊँ. वो ब्राह्मण बोले वो उस जंगल में जाओ. तो 5 मिनट के बाद तुरंत आया वो सब डाकर गुंडा. वो ब्राह्मण से पूछ रहे थे क्या वो कोई आदमी यहाँ आया, आदमी यहाँ आया. तो वो व्यापारी है, उसके पास बहुत धन है जो हम चोरी करना चाहते, वो कहाँ गए, उस जंगल में गए. नहीं करते तो सब गुंडा जो व्यापारी को मिल के उसका गला काट के सोना चोरी किया. और ऐसे पूरा जीवन में वो ब्राह्मण जो एक बार भी झूठ नहीं बोला. और उस समय झूठ नहीं बोलने से मृत्यु का समय नरक है. तो धर्म है झूठ नहीं बोलना, लेकिन उस अवस्था में झूठ बोलना धर्म होगा और झूठ नहीं बोलना अधर्म होगा. और महाभारत में ऐसे बहुत भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया वो कर्ण का वध करना, कहा कि ये अधर्म है, मैं राक्षस नहीं हूँ, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शास्त्र नहीं है. और उस समय भगवान कृष्ण की वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का समय तुम्हारे धर्म का हाथ है. इत्यादि बहुत ऐसे. और कर्ण कुछ भी नहीं बोल सकते, उसको मारा गया. तो ऐसे कैसे द्रोणाचार्य का वध था, अश्वत्थामा हत और उसने वो हाथी ही जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो युधिष्ठिर महाराज का गलत फहमी कि झूठ नहीं बोल, मुझे झूठ नहीं बोलना है, उसको समर्थन करने के पालन करने के लिए निराग से एक हाथी का वध करना. और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का व्रत जो भूमि से ऊपर चल रहे थे तो नीचे गए, उसका कारण क्या है, झूठ बल नहीं है. कारण है कि कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए उत्साही नहीं थे, वही कारण. तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो शास्त्र में धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीत शास्त्रवाद. परंतु ये सब समझने के लिए तो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं चल रहा, जैसे ही धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र तो आजकल उसको न्याय बोलते, लॉ आईन कानून. परंतु धर्म तो अति सूक्ष्म हो सकता, चरम धर्म क्या है, चरम धर्म है कृष्णार्थे खेल चेष्ट, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर. तो कुछ लोग बोलते हैं Kiyo Krishnato Param Adharmata Chorta Makan Chorta Gopi Vastra Haram. I say Bhagavan. O Christian, I say Prachaka. Amara Jesus, to Bahut Sachadmi. O Tumara Krishna. Kuch Ram Bhakti, I say Bhagavan. Amara Ram, Maryada Purushottam. Tumhara Krishna. I say Vyakti. I say Dr. Nejante ki Gopi Vastra Haram Kanese. Bhagavan Krishna Param Dham Pradashanti. Ki Bhakti me Bhaktam Pura Prastut Honga Chahiye. Sab kuch karna Bhagavan ke liye to lajja ajja ho nariyon ka param bhushan hai to Krishna ki seva mein lajja nahi chahta besharam hona chahta Krishna ki bhakti. O Gopi Anjo, Rakhi Beach, Atna Ghar, Charke, Patiyong, Bachong, Sakut Charke, Krishna ki Vamshi Dhani Sundi, Bhagya, to Param Dharmik, isse Param Dharm nahi hai. To kaise sambhav hai? Krishna, ek hai. नारियों के लिए पति व्रत धर्म है, नारियों के लिए तपस्या करने का जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं है, स्तुति पाठ करने का जरूरत नहीं है, एक धर्म पालन करने से उनका पूरा धर्म पालित होते वो पति व्रत धर्म सभी शास्त्र. और भगवान कृष्णा गोपियों को पति धामन लंगन कर तो कहा है धाम तो परम धर्म है जो और सब धर्म के अतीत है. ये धर्म सर्वधामन परित्यज मामेकं शरणम. तो इसका अर्थ क्या है वो सब माता जी तो स्त्री धर्म पालन नहीं करते. पालन करना है और साथ साथ भक्ति भक्ति धर्म भी करना है. तो ये सब विचार बहुत सूक्ष्म है और इसलिए ही हम कष्ट हम शिल प्रभुपाद अनुगामी है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ सदस्य हमारे ही धर्म समझने के लिए भक्ति समझने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो हम शास्त्र से ही समझते हैं. जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं या शास्त्र विधि पुत्र गार्गते काम कार न सस्य विवापन न सुकाम न परामनति तस्मात् शास्त्र प्रमाण कार्य कार्य क्या का शास्त्र विधान कम कार्य कार्य गीता में श्री कृष्ण असुरों का कुचरित्र का वर्णन करने के पश्चात भगवान कृष्ण बोले कि जो लोग स्विच दस शास्त्र नियम पालन नहीं करते और केवल भौतिक काम के लिए सब कुछ करते हैं ऐसे लोग सुख सिद्धि और परम गति प्राप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्र विधि समझना चाहिए और शास्त्र विधि पालन करके जीवन बीतना है। तो हमें शास्त्र पालन करना है और श्रील प्रभुपाद का आचरण उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बहुत 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 विधि है। बहुत एक मराठी पंडित थे, उद्धर्म शास्त्र कान है, उनका नाम कान है। उद्धर्म शास्त्र जितने भी मानव समाज में अभी तक विराजमान है, तो सब संकलन करके अंग्रेजी में अनुवाद के बहुत पुस्तक ऐसे एक शेल्फ इतने सब धर्म शास्त्र, तो बहुत नियम है। तो भक्ति शास्त्र में भी बहुत नियम है। तो हमें क्या पालन करना चाहिए और क्या नहीं, तो शास्त्र से समझना चाहिए, श्रील प्रभुपाद का चरित्र से समझना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के आदेशों से चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार, माधव पूर्य आचरण सर्वधर्म सा। तो धर्म कैसे स्थापित होते हैं मानव समाज में, साधु जनों का व्यवहार से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा माधवेन्द्रपुर जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य है, वे जो कहते हैं वो उनके शिष्यों का धर्म है। इस बात में महाप्रभु इस प्रसंग में कि एक ब्रह्म मथुरावासी शनोय ब्रह्म जो ब्राह्मण को कूल नहीं वो नीच जाते ऐसे माना था, मतलब वो ब्राह्मण जाति तो श्रेष्ठ, तो ब्राह्मणों भी कुछ तारतम्य होते, उच्च ब्राह्मण मध्यम ब्राह्मण नीच ब्राह्मण, जितने भी नहीं देखा था ऐसे देखते तो सब ब्राह्मण बोलते हैं। तो हमारी जाति के ब्राह्मण हम उच्च है और सब दूसरे नीच है, सब ऐसे। लेकिन उस समय मथुरा में वो शानौर्य ब्राह्मण एक जाति ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ब्राह्मण समाज में नीच ऐसे माना था, क्योंकि वे नीच जाति के लोग की पूजा विधि करते थे। उसलिए और इसका कारण से चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी थे, तो सामाजिक व्यवहार के अनुसार तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी थे तो ऐसे ब्राह्मण के घर में भिक्षा अर्थात भोजन लेना नहीं करते, क्योंकि सन्यासियों का एक नियम है कि केवल ब्राह्मणों के घर में भिक्षा ग्रहण करते हैं और नीच ब्राह्मणों के घर में नहीं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कि चूंकि माधवेन्द्र पुरी वो ब्राह्मण का घर में भिक्षु लिया है, इसलिए मुझे भी लेना है। और सब दूसरे लोग जो चर्चा करेंगे, मंत्रव्य करेंगे, निंदा करेंगे, ऐसा ऐसा बोल सकते. लेकिन चूंकि मेरे गुरु परम गुरु माधवेंद्र पुरी ऐसे किए हैं तो मुझे भी करना. तो ऐसे ही धर्म हमें भक्ति में हमें क्या करना है. तो इस आधुनिक युग में हमें श्रील प्रभुपाद का आदर्श आचरण से ही समझना चाहिए. परंतु उसमें भी और कुछ महत्वपूर्ण विचार है कि श्रील प्रभुपाद विशेषकर असंस्कृत और क्रियाहीन लोग के बीच में प्रचार किया. प्रभुपाद के शिष्यों अधिकांश शिष्यों तो म्लेच जाति के, हम नहीं बोलते कि वे म्लेच हो, प्रभुपाद के सब प्रभुपाद के कृपा पात्र. परंतु वैदिक संस्कृति सदाचार ये सब के बारे में प्रभुपाद के शिष्यों विदेशी शिष्यों का ज्ञान नहीं था. और इसलिए श्रील प्रभुपाद विशेषकर पाश्चात्य देशों में उनका प्रचार का आरंभ है तो नियम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं. तो यदि हम विचार करते हैं कि प्रभुपाद जैसे पाश्चात्य देशों में बहुत एडजस्ट किया है और इसलिए हमें वो सब भक्ति नियम पालन करने का जरूरत नहीं है तो वो भी भूल हो. श्रील प्रभुपाद उनके भारतीय शिष्य, एक्चुअली भारतीय शिष्य और भारतीय शिष्य ऐसे विचार इतना सा नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो भक्ति कहते हैं वो सब भौतिक विचार से ही अतीत होते. चैतन्य महाप्रभु ने कहा नीच जाति नहि कृष्ण भजन है अजो, शकुन ब्रह्म नहि भजन है जो, जे भजे से बड़ो अभक्त ही न चा, कृष्ण भजन है नहि जात कुलादि विचार. चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो नीच जाति है तो भक्ति में उनका कुछ बाधा नहीं है. नीच जाति अयोग्य नहीं है भक्ति के लिए और केवल उच्च ब्राह्मण कुल भूत होने से कोई योग्य नहीं है भक्ति के लिए. जो वास्तव में भक्ति करते हैं तो वो योग्य है भक्ति के लिए, वे श्रेष्ठ मानव समाज. जात कुल आदि विचार नहीं है भक्ति में. तो ये पूर्ण आध्यात्मिक विचार है और कुछ व्यवहारिक विचार में कुछ भेद भी है सांस्कृतिक भेद. केवल भारतीय अभारतीय नहीं है तो भारतीय लोग में कुछ भेद होते भक्तों में भी. गुजराती भक्त, ठाणे भक्त, बंगाली भक्त, जैसे कौन सा स्टाइल प्रसाद अच्छा लगते हैं तो अलग होते हैं. वो तमिल जो बहुत इमली वो प्रसाद में लेते हैं तो शायद गुजराती अंदाज तो इतने से अच्छा ना लगते, जिसमें हर एक आइटम में गुड़ या सार का दाना. तो सब भक्त है परंतु भौतिक दृष्टि में कुछ भेद भी है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद उनके ही कुछ भारतीय शिष्यों को बताए कि भक्तों जो विदेश से आया है उनसे भक्ति सिद्धांत सीख सकते, परंतु आचरण व्यवहार वो जो आपकी पिता माता तुमको सिखाए वो पालन करो। क्योंकि दो प्रकार की परंपरा है, एक है पूर्ण आध्यात्मिक और इसलिए आप जो इस जन्म में भारत भूमि ते हो मनुष्य जन्म जा, आप जो भारत से जन्म लिया है मनुष्य शरीर प्राप्त किया है इस बार आप मुझसे भक्ति कथा सुन रहे हैं, ये पूरा आध्यात्मिक विचार। क्योंकि पूर्व काल में भारतीय लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम भगवत कथा विदेशी लोगों से सुन, क्योंकि आप नहीं सोचते कि मैं विदेशी हूं या आप भारतीय हैं, इसलिए आप सुनते हैं। तो ये आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक परंपरा। और दूसरा है शुक्र परंपरा, जिसमें से संस्कृति प्रशिक्षण होते हैं। और इसलिए अर्जुन भगवद गीता में अर्जुन की आपत्ति थी कि यदि हम तो सब राजा को मार देंगे तो नारियों आरक्षित होंगे, नारियों प्रदूषित होंगे, उससे वर्ण संकर। इसका मतलब कि विशेषकर नारियों में से वो संस्कृति शिक्षण होते हैं आजकल नहीं, क्योंकि नारियों तो अभी घर वाली नहीं है, सब ऑफिस वाले बन गए और सबके गुरु पिता माता तो गुरु नहीं है, गुरु है टीवी और इंटरनेट और स्कूल में बड़े बड़े स्कूल बनाते हैं और सिखाते हैं कि तुम्हारा पिता का पिता का पिता का पिता का पिता बंदर। शुक्र परंपरा में और लोग सीखते थे कि मेरे पिता के पिता के पिता कश्यप थे या गौतम थे, और आजकल सिखाते हैं तुम्हारे पिता बंदर मुनि थे, बंदर ऋषि। ये विचित्र है, तो जमाना बहुत विचित्र है। एक्चुअली बहुत भारतीय है तो विदेशी भक्तों की बात सुनते हैं, क्योंकि उनका आदत है वो विदेशी लोग जो भी बोलते हैं उसको शास्त्र से मान्य ऐसे उसमें ऐसे। और उसमें प्रभुपाद विदेश से कुछ बात लाया है, क्योंकि प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले भारत में बहुत प्रयास किए भक्ति प्रचार करने, और लोग तो सही नहीं उस समय पंडित नेहरू का प्रभाव बहुत था। पंडित नेहरू ऐसे पंडित कैसे था, एनीवे ये पॉलिटिकल बात नहीं है, हम प्रभुपाद से सुन ये पंडित नेहरू का प्रचार था कि ज्यादा धर्म पालन करने से भारत का इतना सब नुकसान हो गया। देखो ये सब पाश्चात्य देश जो कितना महान है, तो हमें पाश्चात्य जैसे होना चाहिए। ये सब मंदिर ये सब जरूरत है, मंदिर तोड़ दो, फैक्ट्री बनाओ। ये आधुनिक भारत के नया मंदिर है फैक्ट्री। लोग उत्साही नहीं थे क्योंकि लोग सोचते थे कि पाश्चात्य देशों की प्रगति वही प्रगति है और ये सब आध्यात्मिक प्रगति ये सब क्या है, बकवास है। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाकर कुछ भक्त है तो भारत वापस लाए। देखो विदेशी लोग हरे कृष्ण को, ओ विदेशी लोग हरे कृष्ण भक्त, हमें भी हरे कृष्ण कहना चाहिए। लेकिन इस बुद्धि विदेशी श्रेष्ठ है उसको उसको प्रकट करना एक कहानी है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बोला आमंत्रण भोजन लेने के लिए, तो उसको मांसाहारी जो तो आदमी को मांस के तो किस कैसे मांस है इसका फूल थोड़ा अलग होता है, ये खुद का मांस क्या मुझे क्या नहीं नहीं ये कुत्ता जो गवर्नर साहेब अंग्रेज उसको मारा। ओ धर्म क्या है, ये विषय धर्म देश विदेश ये सब विचार के अधीन। धर्म है कृष्णार्थे खेल सब कुछ कृष्ण की प्रसन्न के लिए। तो याद उपहारम भाव आते और उनकी इच्छा थी कृष्ण सेवा और इसलिए ही भौतिक सुख अनुभव करना विचित्र है। मैं कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ इसलिए मुझे भौतिक सुख अनुभव करना चाहता हूँ, विचित्र है ना। परंतु यादव महाराज का उद्देश्य थोड़ा सा सुख अनुभव करके उसको सब त्याग कर जिससे मेरी भक्ति जुड़ा हो इसके ऐसे। तो सब लोग ऐसे कर सकते कि नहीं मुझे मालूम, अगर कुछ भक्त बहुत है कोई मुझे कुछ सुख अनुभव करना है जिससे मेरी भक्ति जुड़ता ज्यादा हो, मालूम नहीं। इंद्रिय सुख जो मायक है तो यदि हम करेंगे तो माया हमको और ज्यादा खींचते। तो इसलिए वानाश्रम धर्म की और वानाश्रम धर्म है गृहस्थ आश्रम में इंद्रिय सुख भोग करना है परंतु नियम से। केवल इंद्रिय सुख भोग करना नहीं, थोड़ा सा है और ज्यादा भक्ति करना है। ऐसा नहीं है कि मैं गृहस्थ हूं तो इससे सब नियम चढ़, ऐसे नहीं। गृहस्थ आश्रम है, यदि वो गृहस्थ आश्रम होगा तो वो गृहस्थ आश्रम में तो थोड़ा सा इंद्रिय सुख भोग है नियम के अनुसार। और साथ साथ भगवत कथा सुनने हैं, भगवान की भक्ति करना है, जिससे वो इंद्रिय सुख भोगने से गृहस्थों तो तुरंत इंद्रिय सुख से अनासक्त होंगे और योग्य होंगे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने, विरक्त होंगे। हरे कृष्ण। यादव महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अगर किसी का प्रश्न हो जरूर से पूछे।
आप बता रहे थे कि युधिष्ठिर का वध इस दिन नीचे आया कि उन्होंने झूठ बोलने में हिचकिचाए थे, लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन जो भगवान के ज्यादा उनके करीब के भक्त थे, उनका रथ तो हवा में नहीं चलता था, इसका कारण क्या था?
उनका रथ
हवा में नहीं चलता था जबकि और युधिष्ठिर का था।
मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, ये प्रश्न है, सब सुने सुन रहे प्रश्न कि अर्जुन जो कृष्ण के अत्यंत प्रिय है युधिष्ठिर से, ऐसा बहुत है तो सब सब पांच पांडव तो कृष्ण के अति प्रिय है और अर्जुन कृष्ण भगवान के विशेष मित्र है, तो अर्जुन के रथ ऊपर भूमि की ऊपर नहीं चलते क्यों? एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, अन्य अन्य भक्तों को अन्य अन्य आशीष लेते हैं, विशेषकर क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का सुनाम था कि वो परम धार्मिक है, तो कभी भी कुछ अधर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए देवता जैसे वो सुविधा में। तो क्षत्रिय धर्म में झूठ बोलना चाहते हैं, शराब पीना, मांसाहार, ये सब हो सकते हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज तो वे सब नहीं किए। महाभारत में आप अनुसंधान करो कैसे युधिष्ठिर महाराज को आशीष मिला, कोई जानते हैं? किसी का देवता का आशीर्वाद क्या मुझे नाम? यदि हम महाभारत की चर्चा करेंगे तो बहुत प्रश्न उठ सकते। भक्तों में हर एक केंद्र एक महाभारत का एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत कहानियां है, बहुत जटिल है, एक कहानी में एक दूसरे कहानी है, वो कहानी में और भी दूसरे, उसमें और भी दूसरे है, फिर हम दो जाते ही तो पहला कहानी क्या है? व्यासदेव महाभारत की रचना की, क्योंकि श्री शूद्र द्विज बांधुनां त्रायणा वेद गोचर श्री शूद्र ब्रह्म बंधु कालियुग के लोक योग्य नहीं है वेद श्रुति का पाठ करने के, लेकिन महाभारत भी इसको भी समझना आज का हमारे लिए इतना आसान नहीं है।
You must be prepared while making propaganda. You may not have many करता है क्यों? थे महाराज आप ऐसा बोले कि अगली बार आगे पूरा मुझे तैयार ही हुआ वाणी वो विशेष शक्ति है हम आशा करते हैं कि जो ग्रंथ है पढ़ के हम अपना ही में और सीरियस हो सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है करते करते भक्ति जो है एक धार्मिक हो जाता है एक रिचुअल हो जाता है लेकिन उनकी वाणी सुन के और उनकी ग्रंथों को पढ़ के ऐसा होता है कि आप लोग वापस ताजगत हो जाते हैं सीरियस हो जाते हैं जो शुरुआत करते हैं